हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग के लिए इस वक्त वरदान और अंजलि को संभालने के अलावा राणा इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान देना जरूरी था। वो कृषा के साथ राणा इंडस्ट्रीज गया हुआ था, इस वजह से उसने वरदान को लेकर कोई ऑर्डर्स नहीं लिए थे। पिछली बार जब उसे पता चला था कि वरदान ने कृतिका और शांतनु को मारने के लिए छाया का यूज़ किया था, तब उसने अपने आदमियों से वरदान को चाबुक से पूरी तरह पिटवाया था। वरदान के बेहोश होने पर युग के आदमियों ने उन्हें वहीं पर छोड़ा और बाहर आ गए थे। युग और उसके आदमियों ने रात को उन्हें अकेला छोड़ा था। उसके बाद दोपहर होने को आई थी, तब तक वो उनके पास वापस नहीं आए थे। अंजलि ने जैसे तैसे मैनेज करके अपने हाथों की रस्सियाँ खोल ली थी, क्योंकि उसकी हर एक चीज में ट्रेनिंग हुई थी। वो पिछले दो दिनों से रस्सियों को ढीला करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली उसने ऐसा कर लिया था। अंजलि ने खुद को खोला और दबे पांव से चलकर वरदान के पास गई। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोली, वरदान वरदान उठो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हमें यहां से जाना होगा। देखो, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन तुमने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। वरदान ने अंजलि की बातें सुनी तो अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने अपनी अधखुली आंखों से कहा, तुम चली जाओ अंजलि यहाँ से। आई ट्रस्ट यू कि तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उठ भी सकूँ। मेरे चक्कर में तुम इतना अच्छा मौका मत गवाओ। वरदान की ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो काफ़ी धीमी आवाज़ में बात कर रहा था। बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। अंजलि को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि थोड़ी सी मार पड़ने पर ही वरदान ने अपने घुटने टेक दिए थे। वो वरदान को उठाते हुए बोली, ऐसी मारकाट हमारी दुनिया में चलती रहती है। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझे कम टॉर्चर किया है? उस डेविल ने मुझे इस ठंडे कमरे में कम कपड़ों के साथ रखा, जैसा हमने उसकी पत्नी के साथ किया था। हमने तो फिर भी दया आने पर उसके लिए डॉक्टर अरेंज कर दिया था, लेकिन डॉक्टर तो छोड़ो, वो मुझे दिन में सिर्फ एक बार इतना खाना देता था ताकि मैं जिंदा बच सकूं। तुम्हें यहां आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और तुम अभी से बीमार लाचार बन गए। अंजलि वरदान को समझा रही थी, तभी वो उसकी बात बीच में काटकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या वहां आराम से रह रहा था? उसने मुझे आर्मी के पास छोड़ा था, उन्होंने मुझे बहुत मारा था। वहां से बचकर निकला तो ये फिर से मारने पीटने पर आ गया। मेरी बॉडी में अब इतनी ताकत नहीं रही है कि ये और मार झेल सके या उठकर कहीं जा सके। मुझे तुम्हारा गुस्सा नहीं झेलना और ना ही तुम्हारा लेक्चर सुनना है, तो प्लीज़ यहां से चली जाओ। अब तो अंजलि सिंह तुम्हें यहां से ले जाकर रहेगी, अंजलि ने सख्त आवाज में कहा। उसने वरदान को उठाया और अपने कंधे का सहारा देकर बाहर ले जाने लगी। वरदान अभी भी अंजलि को समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बोला, बाहर बहुत सारे आदमी होंगे और सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है, हम नहीं निकाल पाएंगे। तुम मेरे साथ तो बिल्कुल यहाँ से नहीं निकल पाओगी। अकेली रहोगी तो कैसे जैसे उन्हें चकमा दे दोगी, लेकिन मेरा बोझ उठाकर तुम्हारे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ अंजलि, मेरी बात मानो और अकेली ही चली जाओ। अंजलि ने वरदान की बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। वो पिछले 10 दिनों से वहाँ पर थी और अच्छे से जानती थी कि वहाँ किस जगह पर क्या बना हुआ था। वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां और एसी ट्रंक्स बनाए हुए थे। अंजलि ने आसपास देखा, वहां उसे गाड़ी सही करने की किट दिखाई दी। उसमें से उसने स्क्रू ड्राइवर निकाला और ट्रंक को खोलने लगी ताकि उस रास्ते से वरदान को लेकर जा सके। वरदान को लगा अंजलि उसे डोर से लेकर जाएगी, तब उसने हिम्मत छोड़ दी थी। लेकिन अब अंजलि जो कर रही थी उसे देखकर वरदान के दिल में भी उम्मीद जाग गई थी कि अब अंजलि उसे वहां से निकाल देगी। खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना युग राणा, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारे घर ही असली भेदी बैठा है। बहुत हो गया पीछे पीछे खेलना, असली खेल क्या होता है ये मैं तुम्हें बाहर निकलने पर बताऊंगा, वरदान ने अपने मन में कहा। अंजलि ने एसी ट्रंक खोल दिया था। उसके चेहरे पर ईविल स्माइल थी और उसने मुस्कुराते हुए वरदान की तरफ थम्सअप किया। युग अपने कामों में उलझा था और उसे एहसास तक नहीं था कि वरदान और अंजलि ने वहां से भागना मैनेज कर लिया था और अगले ही पल वो उसी एसी ट्रंक के जरिए बाहर निकलने वाले थे।